हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कमरे में आकर विक्रम रंधावा ने गुस्से से अपनी चीजें इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया था। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तारा 7 दिनों की छुट्टी पर होगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो इंसानी रूप में था और अब ऑफिस जाने से मना भी नहीं कर सकता था। इसका मतलब साफ था, उसे ये 7 दिन तारा से दूर रहकर बिताने होंगे। नहीं नहीं, वो अमन मुझसे नहीं जीत सकता था। वो मुझसे दूर होकर भी जीत गया? नहीं, मैं उसे किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा। विक्रांत रंधावा को रह रहकर अमन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अमन का ही ये प्लान था कि 7 दिनों तक तारा भी ऑफिस नहीं जाएगी। अमन उसके सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने उसे अपनी माँ के पास रहने के लिए कह दिया था और तारा ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली थी। और फिर तारा अपना काम भी करना चाहती थी। कुछ देर बाद कमरे में तोड़फोड़ करने के बाद विक्रांत रंधावा उठा और एक खतरनाक सी मुस्कान हंसने लगा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है 7 दिनों तक मैं वहाँ बेवकूफों की तरह उस ऑफिस में काम करूँगा और तुम मुझसे दूर रह लोगी? नहीं नहीं नहीं, मेरी तारा परी, मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो और तुम्हें हर हाल में मेरे पास, मेरे साथ रहना ही होगा। कुछ सोचते हुए विक्रांत एक बार फिर से गार्डन की ओर जाने लगा। वो करिश्मा जी के सामने खड़ा होकर बोला, आंटी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आपको कुछ काम तो नहीं है? आप मुझे बता दीजिए, अगर कुछ सामान मंगवाना हो अमन की गैर मौजूदगी में तो मैं किसी नौकर के हाथों से भेज दूंगा। विक्रांत की बात सुनकर करिश्मा जी हल्की सी हंसी हंसी और बोली, अरे बेटा, किसी सामान की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी यहाँ पर इतने सारे नौकर हैं कि मैं किसी से भी कुछ मंगवा लूँगी, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो आई एम मैनेजिंग, यू डोंट वरी, तुम जाओ और आराम से ऑफिस का काम संभालो। जैसे ही करिश्मा जी ने विक्रांत को ये कहा, विक्रांत का पारा एक बार फिर गर्म हो गया, क्योंकि करिश्मा जी ने उसे आदेश दिया था और विक्रांत रंधावा को तो आदेश सुनने की आदत ही नहीं थी। वो तो उल्टा सभी को आदेश दिया करता था। पिछले जन्म का वो राजा था और अब भी वो शक्तिशाली था और सभी को आदेश दिया करता था। इस जन्म में भी वो एक खतरनाक राक्षस है और अब भी वो सबसे शक्तिशाली है। तो जैसे ही करिश्मा जी ने उसे कहा कि तुम जाओ और अपना काम संभालो, उसे ये बात थोड़ी बुरी लगी। लेकिन खैर, उस वक्त वो इंसानी वश में था तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। जल्दी ही विक्रांत रंधावा वहां से निकल गया, लेकिन जाने से पहले वो तारा की ओर देखना नहीं भूला। वहीं गार्डन में तारा और करिश्मा जी बैठी हुई थीं। उस गार्डन का बोलता हुआ फूल अचानक फिर से अपनी गर्दन झुकाने लगा। तारा उसे देख चुकी थी, लेकिन करिश्मा जी के सामने वो उससे बातें नहीं कर सकती थी। वो समझ गई थी कि ये फूल उसे कुछ बातें करना चाहता है या फिर उसे कुछ बताना चाहता है। कुछ सोचकर तारा उस फूल से बातें करने का इरादा कर चुकी थी, लेकिन करिश्मा जी के जाने के बाद। तब तारा ने कुर्सी पर बैठते हुए एक्टिंग करते हुए कहा, मॉम, पता नहीं मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मुझे लग रहा है मुझे भूख लगी है। तारा की बात सुनकर करिश्मा जी मुस्कुराते हुए उसके गाल को छूने लगी और बोली, ओ मेरे बच्चे को भूख लगी है और मुझे पता है तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अंदर के बच्चे को भी भूख लगी है। तुम यहीं पर बैठो, मैं यहीं पर तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और वैसे भी सुबह का समय है और देखो यहाँ का वातावरण कितना खूबसूरत लग रहा है। और पता नहीं हमारे गार्डन का माली किस तरह से देखभाल कर रहा है, ये देखो हमारा गार्डन कितना खूबसूरत हो गया है। करिश्मा जी को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसका ये गार्डन पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत किसी और ने नहीं बल्कि तारा परी ने किया था। करिश्मा जी तारा को वहीं बैठने को कहती हुई उठकर किचन में चली गई थी ताकि वो तारा के लिए खुद से कुछ नाश्ता बना सके। वो तारा की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो खुद अपने हाथों से तारा परी के लिए नाश्ता बनाया करती थी। क्योंकि करिश्मा जी को कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि काली शक्तियाँ उनके किसी नौकर को अपने वश में कर लें और कोई गलत चीज़ तारा को खिला दें। जब से तारा माँ बनने वाली थी, करिश्मा जी को कितनी ही चिंताएं घेर ली थीं। इसीलिए वो पूरी कोशिश किया करती थी कि हर तरह से तारा को सुरक्षित रख सके। वहीं करिश्मा जी के जाते ही तारा उठी और उस फूल के सामने खड़ी हो गई। उस फूल ने तारा परी को देखते ही 3 बार झुककर उसे सलाम किया। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा फूल तारा के सामने झुकता हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तारा ने जैसे ही उस फूल को देखा, वो भी मुस्कुरा उठी और बोली, क्या हुआ है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तब वो फूल तारा की ओर देखते हुए बोला, अब और मैं किसी से तो बात कर नहीं सकता हूँ, एक आप ही तो हैं जो मुझे सुन सकती हैं और मुझसे बातें कर सकती हैं, तो बस मेरा आपसे बातें करने का दिल कर रहा था, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। और तारा उसकी बात सुनकर कुछ मायूस सी हो गई थी, क्योंकि वाकई उस फूल की बात सच थी। और तारा सोच रही थी कि अमन के बिना एक पल भी उसका रहना कितना भारी हो रहा है, तो बेचारा फूल को तो इसे और भी बुरा लग रहा होगा। तब तारा ने फिर से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके ठीक बराबर वाले फूल में जान फूंक दी। और जैसे ही तारा ने बराबर वाले फूल में जान फूंकी, वो फूल भी बोलने लगा और तारा को 3 बार झुककर सलाम करने लगा। तब पहला फूल बहुत खुश हो गया और कहा, तारा परी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी, अब तो मैं इससे कितनी सारी बातें कर सकता हूँ, आपने मेरे दोस्त में जान फूंक दी, सच में आप बहुत महान हैं। उस फूल की बात सुनकर तारा खिलखिलाकर हंसने लगी। तारा के खिलखिलाकर हंसने पर जितने भी बगीचे के फूल थे, वे एक एक करके खेल उठे। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी तारा को ख्याल आया कि करिश्मा मॉम किसी भी वक्त आ सकती है। अगर उसने इस तरह से फूलों को खिले हुए देख लिया तो उसे शक हो सकता है, इसीलिए वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। पर तारा परी की हंसी जब तक सभी फूलों के कानों में गूंजती रही, तब तक वे सब खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही तारा परी ने हंसना बंद कर दिया, सब के सब फिर से सामान्य हो गए। लेकिन जो बोलने वाला फूल था, उसके साथ एक और बोलने वाला फूल हो गया था, तो उसकी परेशानी भी खत्म हो गई थी। अब वो उसे अपने दिल का हाल कह सकता था। वहीं दूसरी ओर अपने पैर पटकता हुआ विक्रांत रंधावा ऑफिस पहुंच चुका था, लेकिन उसके पास उसका एक प्लान भी तैयार था और उसी के अनुसार उसे काम भी करना था। विक्रांत रंधावा सोच रहा था कि अमन को क्या लगा कि मैं बेवकूफ इंसानों की तरह उसके ऑफिस का काम करूंगा, संभाल लूंगा और वो आराम से अपनी विदेशी यात्रा पूरी करके आएगा। हालांकि विक्रांत रंधावा ने यह पता करने की कोशिश भी नहीं की थी कि आखिरकार अमन गया कहाँ है, क्योंकि उसे तो सबसे ज्यादा इसी बात की खुशी थी कि अमन 7 दिनों के लिए तारा से दूर हो गया है। इस खुशी के आगे उसने इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया था कि अमन कहाँ गया है, और उसे इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि अमन कहीं नहीं गया है, वो केवल बगीचे में गया है और तपस्या पूरी करने के बाद वापस लौटेगा। और वो तपस्या भी सिर्फ अपनी प्यारी पत्नी तारा के लिए कर रहा था, ताकि वो उसे राक्षस यानी विक्रांत से बचा सके।
कुछ देर ऑफिस में काम करने के बाद विक्रांत रंधावा ने अपनी माँ से मिलने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब वो करिश्मा जी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि 7 दिनों के लिए अमन वहाँ नहीं था और 7 दिनों में से पहला दिन शुरू हो चुका था, तो इसीलिए वो करिश्मा जी को वहाँ से हटाना चाहता था, क्योंकि जब तक करिश्मा जी तारा के आसपास रहेगी, वो तारा के करीब नहीं जा पाएगा। ये बात विक्रांत रंधावा अच्छी तरह से जानता था और वो ये भी जानता था कि करिश्मा जी भी जिन है, उनके अंदर भी कितनी सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन वो इस तरह से ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकता था। तभी विक्रांत रंधावा ने अपने केबिन में आकर खुद को बंद कर लिया। बंद करने के बाद उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और हूबहू विक्रांत रंधावा जैसा उसके शरीर से निकल गया जो वहाँ केबिन में बैठ गया, यानी कि विक्रांत रंधावा के अब 2 रूप हो चुके थे। विक्रांत रंधावा ने अपनी एक जान एक अलग रूप में अपने एक प्रतिरूप में फूंक दी थी, ताकि वो ऑफिस में रहे और विक्रांत रंधावा अपनी माँ से मिल पाए और साथ ही साथ वो वापस हवेली में जाकर तारा को देख पाए। हालांकि वो तारा को सामने से नहीं देख सकता था, लेकिन गायब होकर तो देख सकता था ना, तो इसीलिए वो तारा के पास रहने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। ये सोचकर विक्रांत रंधावा ने अपना एक प्रतिरूप अमन की कुर्सी पर बिठा दिया और खुद वहाँ से गायब होकर अपनी माँ से मिलने के लिए रवाना हो चुका था। वहीं ऑफिस में काम करने वाले राधिका के पिताजी जैसे ही एक फाइल लेकर विक्रांत रंधावा के कमरे में गए, तो उन्होंने देखा कि विक्रांत रंधावा का प्रतिरूप कुर्सी पर आराम से टेबल पर पैर रखे हुए बैठा हुआ था। ये देखकर राधिका के पिताजी थोड़े से सोच में पड़ गए, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि बड़े आदमी किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से लेटते हैं। अगर उसने इस बात का जिक्र कर दिया या उन्हें कुछ कह दिया तो हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए। तो इसीलिए जिस फाइल के सिलसिले में वे उस प्रतिरूप के पास गए थे, वे वहाँ से उल्टे पाँव वापस लौट आए। लेकिन ये बात रह कर राधिका के पिताजी को खटकने लगी थी कि अपने काम करने की जगह पर इस तरह से टेबल पर पैर रखकर भला कौन बैठता है।